नमस्कार, ब्रह्मा कुमारी के फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव और सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमारी विशेष लाइव प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। नाम है इसका बी द चेंज सीरीज। मैं हूं आपका दोस्त आरजे शेणी और पिछले लगभग 3 महीने से हम हर दिन आपके साथ मिलते हैं, बातचीत का हिस्सा बनते हैं और आप इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी के वरिष्ठ राजयोगी भाई बहनों से अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। ये बदलाव का समय है। हम सभी जानते हैं कि थोड़े चैलेंजिंग टाइम्स में हम जी रहे हैं और इस बदलाव के समय में अपने आप को बदलना भी बहुत जरूरी है। ऐसे में ब्रह्मा कुमारीज के मास्टर्स ऑफ मेडिटेशन अपने जीवन के अनुभवों के साथ हमारे प्रश्नों का समाधान देने की, हमें मार्गदर्शन देने की छोटी सी पहल कर रहे हैं। तो आइए इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। आज भी हमारे साथ एक ऐसे ही मास्टर ऑफ मेडिटेशन जुड़े हैं। हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी मीरा दीदी जी हैं, जो वाइस चेयरपर्सन है ब्रह्मा कुमारीज के राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के शिपिंग एंड एविएशन वेंचर। आइए दीदी जी से बातचीत करते हैं और उनसे हमारे प्रश्नों का हल जानते हैं। दीदी जी, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में।
जी थैंक यू, मैं भी आप सभी का स्वागत करती हूँ, हमारे दर्शकों का और सुनने वालों का।
जी दीदी, आप मुंबई से हमारे बीच जुड़े हैं। बहुत सारे हमारे दोस्त जो लाइव कार्यक्रम को देख रहे हैं वो बहुत कुछ आपसे मार्गदर्शन लेंगे। कुछ एक दोस्तों ने प्रश्न भी पूछा है। जो दोस्त हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं उन दोस्तों के लिए, दोस्तों आप सवाल पूछ सकते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। आप लिखकर जहां पर भी फेसबुक, यूट्यूब या जहां पर भी आप प्रोग्राम देख रहे हैं वहां पर उसी प्लेटफॉर्म पर आप कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के अपने प्रश्न लिखें, अपने शाउट आउट लिखें, जो कुछ भी आप शेयर करना चाहें वो लिखें, वो हम स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे और वहां से ही प्रश्नों को हम ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। और हमारे साथ पहला प्रश्न आ चुका है और हमारे पहले प्रश्न को पूछने वाले मनीषा जी हैं। और मनीषा जी YouTube से हमारे साथ जुड़े हैं दीदी, और वो प्रश्न पूछते हैं, हाउ कैन वी मेक अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड एंड डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड। वो कहते हैं कि हम एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड को, एक सकारात्मक मन के ढांचे को कैसे बनाएं और पॉजिटिव एटीट्यूड को कैसे डेवलप करें, ये मनीषा जी पूछते हैं।
मनीषा बेन, बहुत सुंदर क्वेश्चन है आपका, क्योंकि ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम नेगेटिविटी को कैसे छोड़े और नेगेटिव विचार जो आते हैं वो कैसे हमारे बंद हो और पॉजिटिव विचार हमारे कैसे हो। तो ये तो एक ऐसी बात हो गई कि ये हमारी एक पसंदगी है कि हम कौन से विचार करें। विचार बहुत अलग अलग प्रकार से होते हैं, कोई साधारण विचार होते हैं, कोई बहुत ही श्रेष्ठ विचार होते हैं, कोई कारोबार के विचार होते हैं, कोई बिल्कुल व्यर्थ विचार होते हैं और कोई नेगेटिव होते हैं। तो हमें सबसे पहले तो अपने आप से ये दृढ़ संकल्प करना होगा कि मुझे मेरे जीवन के अंदर मुझे पॉजिटिव विचार ही करने हैं और उसके अलावा और कोई भी नहीं। और वैसे भी कहा जाता है कि दृढ़ता जो है वो सफलता की चाबी है, फर्म डिटर्मिनेशन इज की टू सक्सेस। तो हमारे जीवन के अंदर दृढ़ता होना ये बहुत 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 आवश्यक है। मैं अपना भी स्वयं का ये अनुभव सुना रही हूँ कि ये ब्रह्मा कुमारी जो जीवन है वो जब मैंने स्वीकार किया, मुझे बहुत पसंद था, तो उस समय मैंने यही दृढ़ता पूर्वक किया। तो जो भी बात है हम जब दृढ़ता पूर्वक करते हैं तो हमें उसमें सफलता प्राप्त होती है। तो आप भी अगर दृढ़ संकल्प करेंगे तो हो ही जाएगा, और यही हमेशा के लिए आपके जीवन के अंदर भी बहुत बहुत कार्य की चीज है। ये बहुत ही काम में आता है क्योंकि हमें स्वयं उससे बहुत ही शांति महसूस होती है और बहुत ही आनंद महसूस होता है जब हम खुद पॉजिटिव विचार करते हैं। तो ये आप भी स्वयं अपने जीवन के अंदर अनुभव आपने किया होगा, और इसीलिए हम सभी की लाइकिंग हमेशा यही होती है कि हम सकारात्मक विचार करें, क्योंकि हमें ही स्वयं फायदा है और हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत फायदा है। जब हम पॉजिटिव विचार करते हैं हम आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छी तरह से हम आगे बढ़ते हैं, हमारा उमंग और उत्साह भी उसमें रहता है और एक उल्लास भी हमारे जीवन में रहता है सकारात्मक चिंतन से। तो इसीलिए बात है दृढ़ता की, तो आप भी अपने जीवन के अंदर दृढ़ता को स्वीकार करिए तो जरूर हो जाएगा।
जी बहुत ही अच्छी बात आपने कही दीदी। एक और प्रश्न हमारे साथ YouTube पे ध्रुवी सोलंकी पूछते हैं। वो कहते हैं, रिलेशनशिप में स्टेबल कैसे रहें, प्लीज गाइड, ऐसा ध्रुवी पूछते हैं।
ध्रुवी बहन, इसमें रिलेशन में भी बहुत लोग पूछते रहते हैं और यहाँ भी काफी सेवा केंद्र पर लोग आते रहते हैं तो रिलेशन के बारे में पूछते रहते हैं, तो हम उन्हें ये बात सुनाते हैं हमेशा कि रिलेशन में हमारी हार्मनी कैसे हो। इसमें ऐसा है रिलेशन में कि जो सामने वाले होते हैं उसकी भी बात हमें बहुत ही धैर्यता से सुननी होती है, तो लिसनिंग पावर जो है हमारा वो बहुत अच्छी तरह से हम रखें, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि कई बार ऐसे होता है कि धैर्यता नहीं होती है और उनकी जो बात होती है वो थोड़ी सी सुनते हैं और स्वयं फिर उसको रिएक्ट कर देते हैं या तो उसका रिस्पॉन्ड एक अलग रीति से दे देते हैं, तो सामने वो बात जो है वो पूरी स्पष्ट नहीं हो पाती है और सामने वाला जो होता है उसको भी एक सेटिस्फेक्शन जीवन के अंदर नहीं होता है कि मैं जो बात कहने चाहता था वो बात मैंने नहीं किया और पूरी भी नहीं होने पाई मेरी बात, तो इस प्रकार से उनको भी बहुत ही असंतुष्टता होती है और सामने हमें सुनने वालों को भी बहुत असंतुष्टता होती है। तो जीवन के अंदर इस बात का बहुत हमें ध्यान रखना होगा कि पहले लिसनिंग पावर हम हमारी अच्छी तरह से रखें, सामने वाले की बात हम अच्छी तरह से पूरा हम सुने और फिर रिलेशन में हम खुद न बिगाड़े, चाहे वाणी के द्वारा या तो कोई बॉडी लैंग्वेज के द्वारा या तो हमारी कोई भी प्रकार से ऐसी एक्टिविटी के द्वारा या तो हमारी हमारे कोई भी कर्म इंद्रियों के द्वारा हम ऐसा न करें कि जो सामने वाले को दुख पहुंचाए हम और उनको बुरा लग जाए। तो ये एक बात का हमें जीवन के अंदर बहुत ध्यान रखना होगा कि तब हमारा रिलेशन अच्छी तरह से उनके साथ हार्मनी में रहेगा। और वैसे समझो किसी से भी कुछ हो गया किसी का, तो हम क्या कर सकते हैं कि मन के अंदर एक सकारात्मक चिंतन कर सकते हैं कि मेरा और उसका रिलेशन जो है वो बहुत ही स्वीट है, मेरा और उनका जो रिलेशन है वो बहुत ही लवली है, मेरा और उनके साथ मेरा बहुत ही हम दोनों यूनाइटेड है, दोनों ही हम यूनाइटेड है, माना रिलेशन हमारा यूनाइटेड है, तो इस प्रकार से उन्होंने मुझे स्वीकार किया है और मैं भी उन्हों को स्वीकार करती हूँ, ये संकल्प आप कर सकते हैं। और दूसरा, आपको कुछ भी ऐसा उनके बारे में लगता है तो आप उनको माफ भी कर सकते हैं, कोई बात में क्षमा भी उनको दे सकते हैं, क्योंकि रिलेशन तो हमारे तब बिगड़ते हैं ना कि जब हमको उनकी कोई बात पसंद नहीं या उनको हमारी कोई बात पसंद नहीं है, तो पसंद नहीं है तो उस समय फिर हमें क्या करना होगा, उस बात को हमें लेट गो करना होगा कि हम उस बात को छोड़ दे, लेकिन महत्व हम रिलेशन को दे कि कोई भी रीति से हमारा जो रिलेशन है वो बिगड़ना नहीं चाहिए उनके साथ, क्योंकि रिलेशन की वैल्यू बहुत होती है दुनिया के अंदर, तो किसी से भी रिलेशन जो है वो हमें बिगाड़ना नहीं है, सबके साथ हमारी मित्रता हो। तो ये मैं समझती हूँ कि अगर हम अपने आप को कन्विंस करेंगे इस रीति से तो रिलेशन हमारा सभी के साथ बहुत ही अच्छा रहेगा, किसी के साथ भी बिगड़ेगा नहीं और एक मधुर रिलेशन हर एक के साथ स्वीट रिलेशन रहेगा और वो हमें बहुत ही स्वीट रिलेशन सुखदायक होता है, ये बात।
दीदी अभी आवाज आ रही है आपको?
हाँ अभी आ रही है
जी। झुमा सेन हमारे एक फ्रेंड है, वो अगला सवाल पूछ रही हैं। वो कहते हैं कि माय फ्रेंड्स डॉटर कंप्लेन्स ऑफ हैविंग डिफरेंट आइडियोलॉजीज फ्रॉम अदर्स फ्रॉम दैट ऑफ हर पेरेंट्स, सो एज अ मदर व्हाट शुड शी से और डू, ये प्रश्न पूछते हैं झुमा जी। झूमा जी का प्रश्न मैं लूं उससे पहले मैं कुछ दोस्तों को इंस्ट्रक्शन दोबारा दे देता हूं जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं। दोस्तों प्रोग्राम लाइव है तो इस प्रोग्राम में आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप अपने सवाल पूछना चाहते हैं तो आप अपने सवालों को कमेंट सेक्शन में डाल के यहाँ पर ले आ सकते हैं और आपसे हम कमेंट से सीधे सीधे इन प्रश्नों को लेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई ऐसे प्रश्न है जो थोड़े प्राइवेट नेचर के हैं, जो आप अपना नाम नहीं शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ, तो ऐसे प्रश्नों को आप पूछ सकते हैं सोशल मीडिया @brahmakumaris.com पर भी, यानी आप इन प्रश्नों को ईमेल के थ्रू भी हमें भेज सकते हैं जहां पर हम आपके नाम को प्राइवेट रखेंगे और आपके नाम को प्राइवेट रखते हुए भी उत्तर देने की हम कोशिश करते हैं। दीदी हमारे साथ झूमा सेन जी हैं जो सवाल पूछ रहे थे, उनके प्रश्न को मैं आप तक कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। झूमा जी बात पूछते हैं कि माय डॉटर कंप्लेन्स ऑफ हैविंग डिफरेंट आइडियोलॉजीज फ्रॉम दैट ऑफ हर पेरेंट्स। बहुत बार ऐसे होता है कि बच्चे यंगर जनरेशन वाले होते हैं, थोड़ा साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड होता है और इसके चलते बच्चे लगते हैं, उनको लगता है कि वो जिन आइडियोलॉजीज में विश्वास करते हैं वो उनके पेरेंट्स से अलग हैं, ऐसा उनको लगता है। तो एज अ मदर झूमा जी पूछती हैं कि मुझे क्या कहना चाहिए अपनी बेटी को और मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा कहते हैं क्योंकि बच्चों की आइडियोलॉजी अलग है और पेरेंट्स की आइडियोलॉजी अलग है।
पूरा प्रश्न शुरू से पहले से नहीं सुनाई पड़ा
जी, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ दीदी। झूमा सेन नाम है जो प्रश्न पूछ रहे हैं और वो पूछते हैं कि उनकी डॉटर कंप्लेन करती है कि पेरेंट्स की आइडियोलॉजी अलग है और एज ए यंगर जनरेशन उनकी आइडियोलॉजी अलग है। तो झूमा जी क्योंकि वो अपने बेटे के बारे में पूछ रही हैं तो वो कहती हैं कि ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या कहना चाहिए अपनी बेटी को क्योंकि उसकी आइडियोलॉजी अलग है और मेरी अलग है, ऐसे में मुझे क्या करना है और क्या कहना चाहिए, ऐसा पूछते हैं।
हाँ जी झूमा बेन, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। ऐसे है इसमें कि बच्चों की और पेरेंट्स की कई स्थान पे ऐसे हैं कि अलग अलग होता है दोनों का ही, लेकिन मैं समझती हूँ कि इसमें जो पेरेंट्स हैं उनको बच्चों के साथ इतनी आत्मीयता ट्रेन करनी है कि बच्चों का इतना विश्वास हो माता पिता में कि हमारे जो माता पिता है वो बहुत अच्छी तरह से हमें गाइडेंस दे रहे हैं और हमारे वो पथ प्रदर्शक है और जीवन के अंदर जो बातें हम उनकी सुन रहे हैं वो बातें बहुत काम की हैं, ऐसे उनको महसूस हो। तो ये शुरू से ही जो संस्कार है उनके अंदर वो डालने होते हैं। एक तो संस्कार होते हैं बच्चों के अपने लास्ट जन्म के संस्कार होते हैं जो यहाँ पर आते हैं वर्तमान समय, तो वो संस्कार लेकर के आते हैं। और दूसरे जो संस्कार होते हैं वो माता पिता से मिलते हैं, टीचर से मिलते हैं, और तीसरे जो संस्कार है वो वातावरण से मिलते हैं। तो घर का जो वातावरण है उसकी भी बच्चों के ऊपर बहुत इफेक्ट होती है क्योंकि पेरेंट्स जो कहते हैं उनकी इतनी असर नहीं होती है जितनी वो पेरेंट्स को देखते हैं कि पेरेंट्स स्वयं क्या करते हैं, तो उसकी इफेक्ट बहुत अच्छी होती है। जैसे आत्मीयता के लिए पहले क्या करते थे कि सभी रात्रि के समय एक साथ में बैठ करके प्रार्थना करते थे या मेडिटेशन करते थे तो ऑटोमेटिक एक आत्मीयता होती थी और दोनों को एक दूसरे की तरफ बहुत ही ये प्रेम तो रहता ही था कि एक दूसरे की बातें जो है वो माने और एक दूसरों को सुख दे। तो मुझे लगता है कि जो भी रिवाज था पहले सुबह उठ करके जैसे पेरेंट्स को नमन करते हैं कोई, या तो गुड मॉर्निंग कहते हैं या तो जिस भी रीति से वो एक्सप्रेस करते हैं ग्रेटिट्यूड अपने माता पिता का, ये बच्चों में ये ख्याल आ जाता है। और ये जब उन्हों में ख्याल आता है तो दोनों के बीच में, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक ब्रिज बन जाता है और जब ब्रिज बन जाता है तो व्यवहार करना, एवरीथिंग जो भी कुछ करना है आइडियोलॉजी के लिए दोनों की, भले उसमें फर्क होता है लेकिन एक दूसरे के साथ बहुत ही हेल्दी रीति से डिस्कशन जो है, विचार विमर्श जिसको हम कहेंगे, तो वो प्रेम से एक दूसरे में विचार विमर्श हो सकता है। लेकिन इसमें माँ बाप को भी थोड़ा बच्चों के प्रति बहुत ही सॉफ्ट एटीट्यूड रखना होगा, ताकि बच्चों का जो है वो माँ बाप के अंदर अच्छी तरह से विश्वास बैठ जाए कि माँ बाप जो कहते हैं वो सही है। नहीं तो क्या होता है कि थोड़ा सा भी क्रोध से माँ बाप ने कुछ कहा बच्चों को, थोड़ा सा भी इरिटेशन से कुछ कहा, बच्चे इतने शार्प होते हैं कि वो बहुत जल्दी से समझ जाते हैं कि माँ बाप में जरूर फर्क है, और फिर उनका ध्यान जो होता है वो बाहर दुनिया में किसी की और जहां से प्यार मिलता है वहां डाइवर्ट हो जाता है, और ये बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए दोनों का आमने सामने है कि दोनों को ही इसमें ध्यान रखना होगा।
दीदी, एक और प्रश्न हमारे साथ यूट्यूब पे हमारे दोस्त जुड़े हैं। नाम है इनका आकाश, और आकाश जी प्रश्न पूछते हैं कि व्हाट टू डू व्हेन देयर इज एन ईविल यू कैन नॉट डिफीट बाय जस्ट मीन्स। वो कहते हैं कि अगर कोई ऐसा गलत व्यवहार करने वाले हैं और बहुत बुरा काम करने वाले हैं जिनको हम न्यायपूर्ण तरीके से डिफीट नहीं कर सकते, क्या हमें डू यू स्टे इन योर हैंड्स विथ ईविल टू डिस्ट्रॉय ईविल, और डू यू रिमेन राइटियस इवन इफ इट मीन्स सरेंडरिंग टू द ईविल। वो कहते हैं कि क्या हमें अपने हाथ गंदे करने चाहिए कि भाई हम ये बुराई को मिटाने के लिए उनसे लड़ें, या फिर हम राइटियस बन के बने रहें, और कभी कभार इसका मतलब ये भी होता है कि हम उस गलत चीज के लिए सरेंडर कर रहे हैं। ऐसा तो ऐसे में क्या करना चाहिए, ऐसा आकाश पूछते हैं।
आकाश भाई, इसमें ऐसा है कि उन्हों के कारण जो हमारे संस्कार है राइटियस के, वो संस्कार हम छोड़ दे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इतने वीक तो नहीं है जो उन्हों के कारण हम अपने राइट संस्कार को छोड़ दे। मैं एक आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे कोई पेशेंट होता है तो सामने हम क्या करते हैं, पेशेंट कोई भी प्रकार से कार्य करता है, लेकिन जो डॉक्टर बनते हैं वो डॉक्टर को कभी बुरा नहीं लगता है, क्योंकि वो समझता है कि ये पेशेंट है। तो हमें भी ये समझना है कि इनके जो संस्कार है वो है ही ऐसे, और वो अपने संस्कारों से बाहर नहीं आ सकते हैं। वो अपने संस्कारों से, जो रॉन्ग संस्कार है उसके, वो बहुत ही वशीभूत है, माना वो उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनका स्वयं के ऊपर भी कोई कंट्रोल नहीं है, और उनका अभी संस्कारों के ऊपर भी कोई कंट्रोल नहीं है, जो पास्ट के संस्कार सारे उनके चल रहे हैं, और इस समय वर्तमान समय में वो उसमें से बाहर नहीं आ रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे होशियार तरवैया होता है, स्विमर होता है, वो होशियार स्विमर उसमें से बाहर निकल जाता है जब वो चक्री होती है उसमें से, लेकिन अगर होशियार नहीं होता है तो वो उसमें से बाहर नहीं आ पाता है, लेकिन वो उसमें गर्क हो जाता है। तो उसी ही तरह से ये जो संस्कारों की बात है, उसमें अगर कोई होशियार और बहुत चाहते हैं अच्छी तरह से, जिसकी लगन है कि मैं इसमें से बाहर आऊं, तो वो बाहर अच्छी तरह से उसमें से आ सकते हैं। लेकिन अगर वो बहुत ही आत्मा जो है वो कमजोर है, उसमें से बाहर नहीं आ सकती है, तो उसके सामने हम तो कमजोर ना बने, लेकिन हम अपनी जो हमारे रॉयल संस्कार है, हमारे जो ओरिजिनल संस्कार है, तो वो संस्कार हम ना छोड़े। और क्योंकि क्या होता है इसमें कि हम अगर रॉन्ग करते हैं तो भोगना तो हमको भी भोगना पड़ेगा ना, क्योंकि कर्मों का जो फल है वो तो मिलता ही मिलता है। कर्म का फल तो किसी को भी छोड़ता नहीं है। जो ओटे सो अर्जुन कहते हैं, जैसा बीज बोते हैं तो वैसा ही तो फल निकलता है। फिर हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमने बोए थे तो ये बीज और निकला ये क्या। तो माना हमने अच्छे ही बीज बोना है, तो इसलिए हमको राइट ही अपने आप को रखना है, और रॉयल्टी से राइट ही हमें करना है। किसी को देख करके हमें कमजोर नहीं होना है, और हमारे संस्कार किसी को देख करके हमें नहीं छोड़ना है, और हम हमेशा ही, मुख्य बात यही है कि अपने ओरिजिनल संस्कारों में हम रहें। जैसे हमारे ओरिजिनल संस्कार है कि मैं शांत स्वरूप हूं, तो वो बहुत समझो सामने वाला अशांत है, बहुत बहुत गलत रीति से वो अशांति कर रहा है, लेकिन उसके कारण हम तो अशांति ना करें ना, हम तो इस प्रकार से रिस्पॉन्ड उसको ना दे। संस्था के जो चीफ आदरणीय शांति दूत जो जानकी दादी जी 104 साल तक थे, तो दादी जी की उम्र 104 साल की थी और दादी जी इतना सुंदर प्रवचन करते थे, तो दादी जी हमेशा कहते थे कि किसी को भी हमें कभी भी तुरंत इस प्रकार से गलत रीति से रिएक्ट नहीं करना है। ये एक्शन उसकी हो गई कि उसने ऐसे गलत काम किया, लेकिन हम तो ना करें, हम तो शक्तिशाली आत्मा है तो हम ऐसा ना करें, बिल्कुल ना करें।
बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि ये जो चीज हम देखते हैं, देखना सही बात है, बट हम गलत करने पर उतर आए ऐसा नहीं होना चाहिए। कल्पना जी हमारे साथ जुड़े हैं। कल्पना जी भी रिलेशनशिप के बारे में एक प्रश्न पूछती हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं। ये पूछती हैं कि हम रिलेशन अच्छे ही चाहते हैं पर सामने वाला रिलेशनशिप तोड़ता है, फिर क्या करना चाहिए दीदी, जिसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ऐसे कल्पना पूछते हैं।
कल्पना बेन, जब सामने देखो, ये उनकी पसंदगी है कि उनको हमारे साथ कैसा रिलेशन रखना है। अगर वो नहीं चाहते हैं, हम तो चाहते हैं चलो कि बहुत ही अच्छा रिलेशन हो, लेकिन अगर वो नहीं चाहते हैं तो फिर हमें ये सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें उसको छोड़ देना पड़ेगा, फिर वो भी अपने आप थोड़ा समय ही जाने से ठीक हो जाएगा। और अगर ठीक नहीं भी हुआ समय के व्यतीत होने से, कभी कभी क्या हो जाता है कि समय एक दवाई बन जाता है, उनको खुद को ही बाद में वो स्पष्ट हो जाता है। उस समय समझो उनको स्पष्ट नहीं हुआ है कोई भी बात हो, लेकिन समय व्यतीत होने से उनको वो बात हो सकती है कि स्पष्ट हो जाए, तो इसीलिए थोड़ा समय जाने देना चाहिए हमें। जल्दीबाजी या तो उतावलापन इसमें हमको नहीं करना चाहिए, और धैर्यता, इसमें भी धैर्यता की बहुत आवश्यकता है हमारे लिए कि हम जल्दी 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 ना चाहे और थोड़ा वेट करे तो सब ठीक हो जाएगा। और पॉजिटिव वाइब्रेशंस फिर भी हम देते रहे, शुभ भावना और शुभ कामना हम देते रहे, क्योंकि हमारी पसंदगी है कि हम चाहते हैं वो रिलेशन, लेकिन हर एक को अपनी चॉइस है ना, वो नहीं चाहते हैं तो हम किसी के ऊपर फोर्स तो नहीं कर सकते हैं ना, और जब हम किसी के ऊपर फोर्स करते हैं तो उसका चार्म निकल जाता है ना, तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं रहता है, फिर निरर्थक हो जाता है। तो हमें भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में रहना बहुत आवश्यक है। हाँ, हम किसी को दुश्मन नहीं मानते हैं, जब आध्यात्मिक मार्ग में होते हैं तो उसमें कोई भी दुश्मन हमारे नहीं होते हैं, लेकिन एटलीस्ट उनकी इच्छा ही नहीं है सामने वाले व्यक्ति की, तो फिर हमें थोड़ा वेट करना होगा, वेट एंड सी, ये हमें करना होगा।
जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई दीदी। एक और प्रश्न है जो हमारे एक दोस्त पूछते हैं, नीरज नाम है इनका, और नीरज प्रश्न पूछते हैं कि माई मदर टेक्स सो मच टेंशन अबाउट फ्यूचर, शी ऑल्सो डज राजयोग मेडिटेशन, वॉट टू टेल हर नाउ। नीरज जी कहते हैं कि मेरी मदर बहुत ज्यादा फ्यूचर को लेके टेंस हो जाती हैं और वो राजयोग मेडिटेशन प्रैक्टिस तो करती हैं, बट उन्हें क्या बोलें, क्योंकि वो ऑलरेडी मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रही हैं, बट उनको हम कैसे समझाएं, क्या बताएं उन्हें, ऐसा नीरज पूछते हैं।
राजयोग मेडिटेशन करते हैं, बहुत सुंदर बात है, और हर एक को ये जीवन के अंदर करना आवश्यक भी है बहुत ही, क्योंकि क्या होता है कि जब स्पिरिचुअलिटी हमारे जीवन के अंदर आती है तो उससे बहुत ही परिवर्तन हमारे जीवन में उन्नति की ओर आता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी का परिवर्तन बहुत ही फास्ट हो जाता है उन्नति की ओर, और किसी का जो परिवर्तन होता है वो स्लो होता है, तो हर एक का इसमें अपने स्वयं के एफर्ट्स पुरुषार्थ के ऊपर है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में एक बात जरूर है कि फ्यूचर के लिए हम कभी भी चिंता नहीं करते हैं, और हम यही शिक्षा देते हैं कि जो हुआ सो कल्याणकारी, जो हो रहा है वो उससे भी ज्यादा कल्याणकारी है, और जो होने वाला है फ्यूचर में वो उससे भी ज्यादा बहुत 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 हमारा कल्याण होने वाला है। तो इसीलिए हमें वर्तमान के अंदर ही रहना है। तो ये हमें अपने आप को हमेशा कन्विंस करना है कि हम वर्तमान में रहे, क्योंकि क्या होता है, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट तीनों ने मिलकर के ये सारा नतीजा आया है, ये बात डिसाइड हुई है कि मनुष्य जो विचार करते हैं मन के अंदर, उसमें 80% जो विचार होते हैं वो पास्ट के होते हैं और 15% जो होते हैं वो फ्यूचर के होते हैं। तो आपने फ्यूचर की बात कही तो मुझे ये बात याद आई कि पास्ट के जो विचार करते हैं उसमें पश्चाताप ज्यादा होता है और सुख के बदले दुख की बातों को बहुत याद करते रहते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, तो उसमें सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। और वर्तमान को हम बहुत अन्याय करते हैं उस समय, जैसे कोई एक ड्रामा देखने के लिए बैठा हो और वो ड्रामा पहले क्या दृश्य आ गया वो ही वो बोलता रहे, मन में सोचता रहे, तो वर्तमान का जो दृश्य है वो सारा मिस हो जाता है। या तो वो बैठे बैठे ऑडियंस में वो भविष्य का सोचे कि भविष्य इसका अभी ये ड्रामा का क्या होगा, तो भी वर्तमान उसका जो होता है वो ठीक से वो नहीं देख पाता, उसको अन्याय करता है और एंजॉय भी नहीं कर पाता ना। सिर्फ अन्याय करने की बात नहीं है, लेकिन उसका आनंद भी तो नहीं उठा पा रहे है ना वर्तमान का। तो इसीलिए फ्यूचर की हमें बिल्कुल चिंता करनी नहीं है, फ्यूचर हमारा बहुत ही अच्छा है और हमें वर्तमान में ही रहना है। तो ये बात अच्छी तरह से उनको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं बहुत ही प्यार से, और वैसे भी मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन से तो फ्यूचर हमारा बहुत 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 ब्यूटीफुल है, तो उसमें तो कुछ कोई शंका है ही नहीं, डाउट हमें रखना ही नहीं है उसके लिए कभी भी। ये तब होता है जब मन के अंदर कोई डाउट आता है। वैसे कहते हैं ना कि दो चीजें लाइफ के अंदर बहुत नुकसान कारक है, एक है मिस्टर जो बहुत ही हमारे लिए डेंजरस है, वो एक है मिस्टर और एक है मिस। तो मिस्टर वो है डाउट और मिस वो है मिस अंडरस्टैंडिंग। तो कभी डाउट नहीं रखना है कि मेरा फ्यूचर में हम बीमार तो नहीं पड़ेंगे, ऐसा तो नहीं होगा, सिक्योरिटी तो हमारे लिए नहीं होगी, बच्चे ध्यान रखेंगे कि नहीं रखेंगे हमारा ध्यान। तो ये सारी बातें क्या है, हम वाइब्रेशंस को फिर इनवाइट कर देते हैं कि हम बीमार तो नहीं पड़ेंगे, तो फिर बीमार पड़ेंगे फिर, क्योंकि हमने इनवाइट कर दिया बीमारी के वाइब्रेशन को। तो ऐसा हमें नहीं सोचना है, लेकिन हम बहुत ही इसमें हम हेल्दी ही रहेंगे और फ्यूचर की कोई हम चिंता न करें, तो मानसिक रीति से भी हम हेल्दी रहेंगे और तन से भी हम हेल्दी रहेंगे। और हेल्दी रहेंगे तो हैप्पी तो रहेंगे ही रहेंगे।
जी बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया दीदी कि पॉजिटिव अफर्मेशन भी बहुत जरूरी है, बार बार ये याद दिला लेना कि सब कुछ अच्छा होगा, अच्छा ही हो रहा है और अच्छा ही होने वाला है आगे के लिए भी। ये बार बार हम अपने आप को याद दिलाते रहने से भी ये चीजें ठीक हो सकती हैं। और आपने बड़ी अच्छी बात कही, अगर आप मेडिटेशन कर ही रहे हैं तो आपका वैसे भी कुछ बुरा नहीं हो सकता, आप हमेशा पॉजिटिव फ्रेम में आ सकते हैं, सिर्फ उसको प्रैक्टिस एक्टिवली करने की आवश्यकता है। एक दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, मनोज अधिकारी नाम है इनका। मनोज जी यूट्यूब से प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं और वो पूछते हैं, ओम शांति, आई एम एन एडिक्ट हु हैज कमिटेड बैड डीड्स, मेडिटेशन एंड अटरिंग गॉड्स नेम रियली हेल्प्स मी बट आई यूजली गेट ड्राउन्ड विद डिजायर्स। वो कहते हैं कि वो एक एडिक्ट हैं और एडिक्शन के कारण उन्होंने बहुत सारे गलत कर्म किए हैं, गलत हुआ है उनसे पास्ट में। मेडिटेशन से और भगवान का नाम लेने से उनको बहुत मदद मिलती है, बट यूजुअली ऐसा होता है कि मैं अपने ही इच्छाओं के वशीभूत हो जाता हूं और उसमें डूब जाता हूं, ऐसा ये कहते हैं। और ये एडिक्शन से बाहर आने के बारे में पूछते हैं, मनोज नाम है इनका।
जब कोई भी प्रकार का एडिक्शन से बाहर आना है तो एडिक्शन पहले तो इसलिए हो जाता है कि कभी कभी किसी को टेंशन हो जाता है कोई बात का, और टेंशन से समझते हैं कि मुझे रिलैक्स होना है तो वो एडिक्शन में चले जाते हैं। लेकिन देखा गया है कि एडिक्शन जो है वो और ही बहुत नुकसान कर देता है, और रिलैक्स होने की तो उसमें बात होती ही नहीं है, लेकिन और उसमें टेंशन बढ़ता है, सिर्फ टेम्पररी थोड़े समय के लिए उनको ऐसे लगता है कि हमारा टेंशन अभी नहीं है क्योंकि एडिक्शन में है उतना समय, लेकिन तन के ऊपर भी उसका प्रभाव जो है वो बहुत ही नुकसानकारक होता है, और सबसे ज्यादा मन के ऊपर भी उसका जो प्रभाव होता है वो बहुत बहुत नुकसानकारक होता है। तो हमें बहुत अच्छी तरह से अपने मन को समझाना चाहिए कि ये सारी बातों से मुझे मेरे जीवन के अंदर बहुत नुकसान है और मैं इतना कमजोर क्यों। जब हमारा विल पावर बहुत सुंदर होता है, आत्मविश्वास बहुत अच्छा होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा बहुत अच्छा होता है, तो कोई भी एडिक्शन की जरा भी उसमें इन्वॉल्व होने की आवश्यकता नहीं होती है। कभी कभी एडिक्शन मैंने देखा है कि क्यों होता है किसी को, क्योंकि संग ऐसा होता है, तो संग के अंडर प्रभाव आ जाते हैं, उसके इतना अंडर इन्फ्लुएंस आ जाते हैं कि स्वयं कभी कभी तो जानते भी हैं फिर भी एडिक्शन में स्वयं को इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो उसमें से अभी जब आपको देखो, एक तो बहुत सुंदर बात ये है मनोज भाई कि आप उसमें से बाहर आ गए हो। कैसे बाहर आ गए हो, कहते हैं ना कि पता चल गया इस बात का कि मुझे इसमें से बाहर आना है, तो ये तो बहुत अच्छा हो गया, तो 50% तो आपका हो ही गया, क्योंकि आपको एक रियलाइजेशन तो हो गया कि मुझे ये ठीक बात नहीं है और मुझे इसमें से बाहर आना है, तो ये आपको एक सेल्फ अवेयरनेस तो आ गई ना। तो जब एक बार सेल्फ अवेयरनेस अपने जीवन में आ जाती है तो उसी सही दिशा में हमारा पुरुषार्थ जो है वो आगे बढ़ता है। कम से कम वो अभी दिशा तो गलत नहीं होगी ना, तो अभी वो सही दिशा का आपको जो ये मन में जागृति आ गई है कि मुझे वो छोड़ देना है और फिर से उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, तो उसको ही आप बहुत अच्छी तरह से आत्मविश्वास उसमें रखिए कि इससे ही मुझे बहुत फायदा होगा, और आप कंटिन्यू करिए, और उसके लिए आप अच्छे विचारों का, या तो अच्छी पढ़ाई का, या तो बहुत अच्छी कंपनी का, और मेडिटेशन का आप सहारा ले लीजिए, तो मेडिटेशन के सहारे से और भी छूट जाएगा, ये विचार आएगा ही नहीं कि फिर से मुझे वो इच्छा हो जाए। तो कहते हैं ना कि इतनी सारी जो इच्छाएं हैं तो उसमें से कौन सी इच्छा, इच्छाएं तो रेत के माफिक होती है, सागर के किनारे कितना रेत होती है, तो इच्छाएं तो बहुत होती है, वो तो जैसे कि एक घोड़े के ऊपर बैठते हैं और लगाम हमारे हाथ में है ही नहीं बिल्कुल, तो क्या होगा, घोड़ा हमें कहाँ, अश्व हमें कहाँ ले जाएगा, गिरा भी दे सकता है ना हमें, और गिराएगा ही हमें क्योंकि उसकी लगाम है ही नहीं हमारे हाथ में, कंट्रोल है ही नहीं। तो इसीलिए हम ऐसे अश्व के ऊपर हमें सवारी बिल्कुल नहीं करनी है, तो ये तो ऐसी सवारी हो गई एडिक्शन में आना माना, ऐसी इच्छा करना माना, तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि मुझे इच्छा रखनी ही है तो मैं श्रेष्ठ इच्छा रखूं और सर्वश्रेष्ठ इच्छा रखूं, और मेरा जीवन मैं सफल करूं और मेरा जीवन मैं सार्थक करूं। जब आए ही है संसार के अंदर तो हम सार्थक करें, जीवन नैया को पार कर दे। परमात्मा कहते हैं कि हमारी जीवन एक नैया है और हमें कौन मिला है, परमपिता परमात्मा खेवैया मिले हैं, तो जब खेवैया हमारे साथ है परमपिता परमात्मा, तो हमारी नैया तो जीवन की पार हो जाएंगी। तो आप परमपिता
जी
परमात्मा खेवैया को अपने साथ रखें।
जी बहुत ही अच्छी बात आपने कही दीदी कि हमें परमात्मा को हम अक्सर सोचते हैं कि भाई बहुत दूर है, वो कहाँ हमारी बात सुनेगा, बहुत बिजी होगा, बट हमेशा उसको साथी बनाना, खिवैया बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये करने से एडिक्शन जैसी चीजें आसानी से ओवरकम किया जा सकता है, मेडिटेशन से भी हेल्प मिलता है। एक और हमारे दोस्त हैं जाविया जी, और इन्होंने कल भी प्रश्न पूछा था, और वो पूछती हैं कि आई फील दैट माई कनेक्शन विद द डिवाइन हैज वीकेंड एंड आई फील दैट आई एम अनसक्सेसफुल इन रीइग्नाइटिंग दैट कनेक्शन, व्हाट कैन आई डू इन दिस मैटर। आप परमात्मा को साथी बनाने के बारे में कह रहे थे दीदी अभी, और ये जाविया जी यही प्रश्न पूछते हैं कि वो ऐसा महसूस करती हैं कि परमात्मा के साथ जो डिवाइन है उसके साथ उनका संबंध कमजोर हो गया है, और वो बहुत कोशिश कर रही हैं बट उस कनेक्शन को वापस रीइग्नाइट करने में वो अनसक्सेसफुल हो रही हैं, ऐसा वो महसूस करती हैं। मैं क्या कर सकती हूँ इस मामले में, ऐसा जाविया पूछती हैं।
जविया बेन, ऐसा है कि परमात्मा हमारे से दूर तो है ही नहीं। जैसे आप जिस घर में रहते हो, तो जो परिवार के सारे मेंबर्स है, तो उसके साथ आप कैसे बातचीत तो करते हो ना, एक दूसरों के साथ तो बातचीत कॉन्वर्सेशन हम करते ही है ना, और एक दूसरों के साथ हमारा कनेक्शन भी घर के अंदर होता ही है ना। तो साथ साथ आप ये समझिए कि परमपिता परमात्मा जो भगवान है, वो परमात्मा भी मेरे साथ साथ है। यहां तक समझ सकते हैं कि वो हमारे साथ कंबाइंड है, वो हमारी कंपनी में है और वो हमारे कंपेनियन है, वो हमारे से अलग है ही नहीं। जैसे मेरा हाथ है, तो मेरा हाथ मेरे से अलग नहीं है, लेकिन वो जॉइन है, तो इसीलिए वो साथ साथ में है। तो परमात्मा का भाव आप इसी ही प्रकार से मन के अंदर एक विचार करिए, श्रेष्ठ विचार ये करिए, मन के अंदर ये संकल्प करिए कि परमात्मा मेरे साथ है और वो डिवाइन कनेक्शन परमात्मा के साथ मेरा है ही, वो मेरे मात पिता बंधु सखा स्वामी सब कुछ मेरे लिए परमात्मा है। आप इतना महत्व और प्रायोरिटी पहले परमात्मा को दीजिए हर कार्य में। आप क्या करिए, एक सुंदर इसकी मेथड है और विधि है, और विधि पूर्वक हम कोई भी बात करते हैं तो सिद्धि मिल जाती है। तो आप ये करिए कि कोई भी कर्म आप शुरू करते हैं, मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल दे रही हूँ, क्या पानी पी रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, तो उस समय आप क्या करिए, पानी को दृष्टि दे करके परमात्मा ने ये दिया हुआ है थैंक यू, ये तो इजी है, आभार मानना, धन्यवाद मानना, तो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड हम रखें कि ये परमात्मा के भंडारे से हमें ये मिला हुआ है, ये पानी या तो भोजन हमें मिला हुआ है, तो हम परमात्मा को फिर कनेक्शन में रहेंगे ही रहेंगे परमात्मा के साथ, हम परमात्मा को भूलेंगे ही नहीं, क्योंकि पानी पीना हम भूलते नहीं है, भोजन करना हम भूलते नहीं है, बिल्कुल नींद करना नहीं भूलते हैं। नींद करते समय आप गुड नाइट करिए, सुबह में उठते हैं तो उस समय गुड मॉर्निंग करिए परमात्मा को। तो आप कितनी बार जुड़े हुए हैं परमात्मा से, घर से आप बाहर निकलते हैं तो जैसे दूसरों का आप कहते हैं कि हम बाहर जा रहे हैं, तो आप मन में संकल्प करिए कि हे परमपिता परमात्मा, मैं बहुत सेफ्टी से अपने घर से बाहर जा रहे हैं हम, और हम सेफ्टी से वापस आए, आप तो परम रक्षक हो, हमारी रक्षा आप तो कर रहे हो। तो इस प्रकार से आप छोटी 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 बातों को, आप कोई बड़ी बात के लिए नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बातों में जो हमारे जीवन के साथ है कनेक्टेड, ये सारी छोटी छोटी बातों को परमात्मा के साथ आप कनेक्ट कर दीजिए और आप अपने आपको उसमें कनेक्ट कर दीजिए, तो बहुत इजीली सहज रीति से आप ये कर पाएंगे, और इस विधि से करेंगे तो आपको सिद्धि मिलेंगी ही मिलेंगी, इसमें कोई शंका नहीं है।
बहुत ही बढ़िया चीज आपने बताया दीदी कि हम ये इस विधि से जब चीजें करते हैं तब वो चीजें मिलती भी हैं। वीना आर्य हमारे साथ जुड़े हैं और यूट्यूब से प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं, वो प्रश्न पूछते हैं, दीदी कोई को कुछ समझाने से अगर वो दुखी होता है तो क्या वो भी हमारा कर्म बनता है क्या, पर हम तो उनके अच्छे के लिए ही बोलते हैं। बहुत बार ये होता है कि हम किसी को समझाने के लिए कुछ अच्छी बात बोलते हैं बट वो सामने वाला दुखी होता है, तो हमारा कर्म बनता है क्या, ऐसा पूछते हैं, जबकि हम उनके अच्छे के लिए बोल रहे हैं, ऐसे में क्या सोचना चाहिए हमें, ऐसे वीणा पूछती हैं।
वीणा मैम, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है कि जब हम किसी को कहते हैं उनको पसंद नहीं आया, और क्या हमारा ऐसा कर्म बन जाता है क्या जो ठीक नहीं है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो हमारी भावना क्या है, वो बहुत महत्व की बात है कि हमारी भावना बहुत शुद्ध होनी चाहिए, बहुत ही स्वच्छ भावना होनी चाहिए और बहुत ही शुभ भावना होनी चाहिए कि ये सुधर जाए, और इनका उससे भी विशेष बात कि इनका कल्याण हो। और जब हम समझाते हैं किसी को, समझो उसने कुछ मिस्टेक की और आप कुछ समझाना चाहते हैं उनको, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए कि हमको उनमें जो गुण है, उनकी जो विशेषताएं हैं, उनकी जो अच्छी क्वालिटी है, तो वो पहले हमको उसकी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि वो तो सच्ची तारीफ है ना, हम ऐसे ही तो नहीं कह रहे हैं ना। जब उसमें वो गुण है तब हम उसको कह रहे हैं कि आप में ये कितनी अच्छी बातें हैं, आप में ये कितनी अच्छी स्पेशलिटी विशेषता है, आप में ये कितनी अच्छी क्वालिटी है, तो ये कह करके, लेकिन एक बात मुझे ऐसे लगती है, आप देख लीजिए, आप भी सोचना इसके ऊपर थोड़ा, मुझे ऐसे लगता है, तो आप भी इसके ऊपर देखिए कि ये ऐसी नहीं लेकिन ऐसी ऐसी बातें हैं। तो इस प्रकार से बड़े प्यार से, आपको बड़े प्यार से उसको कहना पड़ेगा और बहुत ही श्रेष्ठ रीति से उसको ये कहना पड़ेगा, उसमें जरा भी इरिटेशन में नहीं आकर के कहना है बिल्कुल, लेकिन प्यार से ही कहना है, मैं तो यही कहूंगी। तो फिर जब प्यार से हम कहते हैं और बहुत ही विश्वास पूर्वक कहते हैं और बहुत ही मन में सकारात्मक सोच करके हम कहते हैं कि परमपिता परमात्मा इनके ऊपर जरूर इसका प्रभाव हो इस बात का, क्योंकि इसके ये कल्याण के लिए है, ये बात ये खुद नहीं जानते हैं लेकिन हम जानते हैं कि इनके कल्याणकारी बात है, तो जरूर इसके ऊपर असर हो, ये सोच करके फिर आप उनको कहना कोई भी बात, फिर आपका कुछ उसमें खराब नहीं।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी इस उत्तर के लिए। और अगले एक दोस्त हैं हमारे साथ, विग्नेश नाम है इनका, और ये प्रश्न पूछते हैं कि हाउ टू फेस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ये पूछते हैं कि ये जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, इसे हम कैसे फेस करें, ये प्रश्न पूछते हैं विग्नेश।
विघ्नेश भाई, ऐसा है इसमें कि न इंफेरिटी में आना है न सुपीरियरिटी में, लेकिन हम हमेशा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट जिसको कहते हैं, स्वमान में हमें रहना है। तो हमारा जो स्वमान है वो तो यही है आध्यात्मिकता में और वैसे भी हर एक के लिए, कि हम एक शांत स्वरूप है, हम प्रेम स्वरूप है, हम सुख स्वरूप है, हम आनंद स्वरूप है, हम पवित्र है। तो ये जो बातें हैं कि हम शक्ति है और हम ज्ञान स्वरूप है, इस बातों का मन के अंदर अगर आप बहुत अच्छी तरह से बार बार रिपीटेशन करेंगे, आप दोहराएंगे ये सारी बातें, तो ये जो सारी बातें हैं आत्मा की सात क्वालिटी जो है, गुणवत्ता जो है इतनी सुंदर, तो ये सारी बातें आपको बहुत पक्की होती जाएंगी। और जब ये बातें पक्की होती जाएंगी दोहराने से, और दोहराते क्यों हैं हम, ताकि हमें बार बार स्मृति में रहे, और जब हम कुछ भी वाणी बोलते हैं तो उसकी हमारे पर भी असर होती है, दूसरों पर भी असर होती है। सबसे पहले हम जो भी संकल्प करते हैं उसकी भी हमारे स्वयं के ऊपर भी असर होती है और दूसरों के ऊपर भी असर होती है। तो हमें इसलिए क्या करना चाहिए कि हम इतने यूनिक सोल है, हम सोचे हमेशा कि हम बहुत अनन्य है, हमारे जैसा दूसरा, दूसरे की अपनी विशेषता है, मेरे में अपनी विशेषता है, तो उसमें हम किसी के साथ अपने कंपैरिजन ना करें। कंपैरिजन करने से इंफेरियरिटी कॉम्प्लेक्स या तो सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसलिए हम स्वयं एक विशेष आत्मा है और हमारा जो पार्ट है वो बहुत ही यूनिक पार्ट है। तो ये जब हम सोचते हैं, और विशेषता तो आप में भी बहुत होंगी, आप में भी गुण तो बहुत होंगे, तो इसीलिए हमें उस गुण को और विशेषता को हमें डेवलप करना है। तो आपकी जो आंतरिक सारी शक्तियां हैं वो जागृत हो जाएंगी और आपके गुणों का विकास हो जाएगा, तो इन्फेरियरिटी को कोई स्थान रहेगा ही नहीं, बिल्कुल स्थान नहीं रहेगा, और आप एकदम नॉर्मल रहेंगे।
जी दीदी, एक और दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं। ये प्रश्न पूछते हैं कि इनके फैमिली से रिलेटेड ये चीज है, पारुल नाम है इनका, और ये फेसबुक से हमारे साथ जुड़े हैं। और पारुल पूछते हैं कि मेरे भाई ने मुझ पर हाथ उठाया, तब से उसने अपोलोजाइज नहीं किया, और इस वजह से हमारे रिश्ते और मेरी मदर के साथ रिश्ते बहुत खराब हो गए हैं। हाउ कैन आई सॉल्व दिस, ऐसा पारुल पूछते हैं। नेचुरली फैमिली का इशू है, तो ऐसे में क्या गाइड करना चाहेंगे पारुल?
पारुल बेन, अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। इसमें ऐसी बात है पारुल बेन कि उसने तो हिंसा की वो गलत ही किया है, और गलत तो हमेशा गलत ही रहता है, लेकिन आपकी एक बहुत अच्छी बात रही कि आपने लड़ाई झगड़ा उनके साथ नहीं किया और आपने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है। तो आप जो है वो अभी वो नहीं समझ पा रहे हैं, वो रियलाइजेशन उनको नहीं अभी तक हुआ है कि उसने ये गलत किया जो हाथ उठाया, माय माना हिंसा की, वायलेंस बने, वो वायलेंट बन गए, तो वो उसको समझ में अभी नहीं आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा समय व्यतीत होने से, या तो कोई भी उसको समझाएंगे आपने, लेकिन दूसरा कोई भी उसको समझाए और उसको समझ में ये बात आए, जिसके ऊपर उसका बहुत विश्वास हो और जिसके ऊपर उसका बहुत रिस्पेक्ट हो, तो वो ऑटोमेटिक आपसे मांगेंगे माफी। लेकिन आप ये चाहना भी मत रखो कि वो मेरे से माफी मांगे और मुझे वो सॉरी बोले तो ही मैं उसको माफ करूं, ये भी आप अपने मन के अंदर ये संकल्प मत रखो। और आप जो है, क्योंकि तब तक आप आपका खुद का मन डिस्टर्ब होता रहेगा, क्योंकि आपकी अगर ये इच्छा पूर्ण नहीं हुई कि वो मेरे से माफी मांगे, तो तब तक क्या हो जाएगा, आप दुखी हो जाएंगे ना। तो हम ये सारा सोचकर दुखी दुखी हो जाएंगे तो अच्छी बात नहीं है ना, हमें तो जीवन के अंदर दुख देना भी नहीं है तो दुख लेना भी नहीं है ना। तो उसने तो दुख दिया लेकिन हमको नहीं लेना है ना, मुझे आपने कोई चीज आपने मुझे दी, मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या कहूंगी कि बेंजी मुझे ये नहीं चाहिए, ऐसे कहूंगी ना कि पारुल बेंजी मुझे ये नहीं चाहिए। तो आप कहो कि आपने तो हमको ये दुख दिया लेकिन हमको वो दुख स्वीकार हमको नहीं करना है, तो आप दुखी मत हो जाओ, आप दुख स्वीकार बिल्कुल नहीं करो, और आप अपने मदर के साथ भी रिलेशन बिल्कुल नहीं बिगाड़िए, क्योंकि वो भाई के संस्कार है, ये कोई मदर के तो संस्कार नहीं है ना, तो उसमें मदर ने क्या किया है, और मदर तो मदर ही है ना, मदर फादर तो, मदर फादर तो मदर फादर ही है ना, वो तो बड़े ही है ना हमारे से, तो इसीलिए उनका तो हमको रिस्पेक्ट रखना ही रखना है। लेकिन एक दिन आ जाएगा जो भाई को भी ये रियलाइज हो जाएगा, और परमपिता परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे देंगे। आप इस प्रकार से मन में, आपको बहुत ऐसे मन में लगता है, तो आप ये मन के अंदर संकल्प करिए कि परमात्मा जरूर निश्चित निश्चित परमात्मा उनको सद्बुद्धि देंगे, और सचमुच उनको सद्बुद्धि मिल जाएंगी, और फिर आप जो है वो बिल्कुल उसके लिए, आपको दुखी जो है वो बिल्कुल मन में लो फील नहीं करना है जरा भी, और आपको अपना मूड बना करके रखना है, एवरग्रीन मूड, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि उसके कारण आपको इफेक्ट में नहीं आना है।
जी, रिश्ते थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, कभी कभार गलतियां होती हैं, बट एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है सामने से सुधार हो, हम खुद अगर कुछ कर सकते हैं, अच्छे ब्लेसिंग दे सकते हैं, गुड विशेस रख सकते हैं, तो बहुत हेल्पफुल होता है। बहुत ही अच्छी बात आपने कही दीदी।
एक बात मुझे याद आई कि फॉरगेट एंड फॉरगिव एंड फॉरगेट, क्षमा करो और आप भी भूल जाओ बात को, दुखी ऐसी बातों को याद मत रखना।
जी, एक और फ्रेंड हमारे साथ जुड़े हैं, अभिजीत नाम है इनका, और बहुत सारे लोग मेडिटेशन कर रहे हैं पिछले 3-4 महीने में, लॉकडाउन में बहुत सारे दोस्तों ने ऑनलाइन कोशिशें की हैं, ऑनलाइन कोर्सेज भी किए हैं। अभिजीत प्रश्न पूछते हैं, मैंने अनुभव किया है कि मेडिटेशन की शक्ति को बहुत दिन पहले, और अब जब मैं खुद से करने की कोशिश करता हूं तो संभव नहीं हो पाता है, कृपया रास्ता बताएं, राजयोग परफेक्टली कैसे किया जाए, ऐसा अभिजीत पूछते हैं। ये हमारे यंग फ्रेंड हैं और उनको काफी टाइम पहले मेडिटेशन में अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है, मेडिटेशन में शक्ति अनुभव हुई है, बट काफी दिनों से वो कोशिश कर रहे हैं, ऐसा फिर से उनको नहीं हुआ है, तो ऐसा संभव नहीं हो पाता जब वो खुद से मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, तो ऐसे में क्या किया जाना चाहिए, ऐसा अभिजीत पूछते हैं।
अभिजीत भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है मेडिटेशन के बारे में, जो आज यूनिवर्सल ये महत्व सभी दे रहे हैं मेडिटेशन को, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि मेडिकेशन के साथ साथ, किसी की तबीयत ठीक नहीं है तो मेडिकेशन के साथ साथ मेडिटेशन भी बहुत बहुत आवश्यक है, और मेडिटेशन बहुत ही साइंटिफिकली है। मेडिटेशन शब्द मेडरी लैटिन वर्ड से है, माना टू हील, तो हमें अपने मन को बहुत अच्छी तरह से हील करना है। जब मन अच्छी तरह से हील हो जाता है तो तन तो ऑटोमेटिकली हील हो जाता है, क्योंकि मन की असर हमारे तन के ऊपर बहुत अच्छी होती है। मन और तन का जो एनवायरनमेंट है वो फर्स्ट एनवायरनमेंट है, बहुत ही समीप बहुत ही नजदीक, तो उसके ऊपर भी इफेक्ट होती है। और मेडिटेशन सही रीति से अगर हम करते हैं, इट इज कहा जाता है कि इट इज ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन, तो जो भी हमारा टेंशन होता है, तनाव होता है, वो चला जाता है, समाप्त तो हो जाता है, और हम रिलैक्स हो जाते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं, हम रिचार्ज हो जाते हैं, और ये हम रियलिटी में ये अनुभव करते हैं कि कैसे हम रिजुविनेट भी हो जाते हैं। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, तो मेडिटेशन में यही तो होता है कि हम अपना स्वयं का जो कनेक्शन है वो परमपिता परमात्मा के साथ जोड़ते हैं, जिसको योग भी कहा जाता है। और कनेक्शन जोड़ने से ही हम स्वयं बहुत ही शक्ति महसूस करते हैं, शक्ति अनुभव करते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए थोड़ा, और ज्यादा प्रैक्टिस करिए तो जरूर हो जाएगा मेडिटेशन। और श्रेष्ठ विचार उसमें लाइए अपना, परमात्मा से बातें करिए, नॉर्मल बातें करिए, जिसको हम रू रूहान कहते हैं, कि आत्मा की सुप्रीम सोल के साथ बातें, तो उससे आपके जीवन में बहुत ही आनंद आएगा। ये आप करके देखिए अभी, इस रीति से, इस विधि से।
दीदी, एक और फ्रेंड है, मरिया नाम है इनका, मरिया पीटर। और मरिया जी का प्रश्न है कि मेरा सन छोटी छोटी बातों में डिप्रेशन में आ जाता है, क्या कारण है? ही इज 12 years old, ऐसा ये पूछती है। उनका बेटा 12 साल का है और छोटे छोटे बातों में डिप्रेस्ड हो जाता है, क्या कारण है? ऐसा मरिया जी जानना चाहती हैं।
मरिया जी, बेन ऐसे हैं कि डिप्रेशन के शिकार तो बहुत लोग हैं वर्तमान समय में, परिस्थिति के कारण, और इतनी नेगेटिविटी भी चल रही है उसके कारण। और ऐसे कभी कभी संग भी ऐसा होता है जो बातें ऐसी फ्रेंडशिप में चलती हैं तो बहुत ही वो डिप्रेस करने वाली भी बातें होती हैं। तो ऐसे समय में आप क्या करिए कि उनके साथ बैठिए और पूरा उनको उमंग, उत्साह और उल्लास में लाने का पूरा प्रयत्न करिए। और उनको आप पूछिए कि किस कारण उसका मन घड़ी घड़ी ऐसा डिप्रेस हो जाता है, और हो सके तो थोड़ा, जो हमने सुना है बहुत अच्छी तरह से, कि मेडिटेशन तो करना ही करना है, लेकिन थोड़ा सूर्य प्रकाश और थोड़ी सी कोई एक्सरसाइज हो तो वो करने से हैप्पी हॉर्मोन्स जो है वो सारे हैप्पी हॉर्मोन्स जो है वो भी सारे अपने शरीर से निकलते हैं। क्योंकि आजकल क्या है कि मीडिया में, टीवी में भी बहुत सारी बुक्स भी ऐसी है होती हैं कि जो सारी इंस्पायर करती हैं, तो ऐसी इंस्पायर करने वाली बातें हैं, जो हमें हर्षित करने वाली बातें हैं, हमें हंसाने वाली जो सारी बातें हैं, तो वो सारी हम उसको सुनाए और घर का वातावरण इतना सुंदर रखे, प्यार का, प्रेम का, कि उसको जरा भी उसके अलावा कुछ नजर ना आए घर में, और घर में ही खुशी का और आनंद का वातावरण उसको महसूस होना चाहिए बच्चे को। क्योंकि 12 साल का ही बच्चा है ना, छोटा सा, तो घर में भी वातावरण ऐसा रखिए। ऐसा नहीं कि कोई समस्या आ गई है, बड़े प्रॉब्लम आ गया है, अभी हम क्या करें, इस प्रकार से ना रखें। लेकिन बच्चे के साथ आप बातचीत करते रहे, बहुत प्यार से बातचीत करें, उमंग, उत्साह और खुशी उनको दे, और उनको हंसाए कैसे भी करके।
ये बहुत ही अच्छी बात कही दीदी कि घर का वातावरण हम ऐसा बनाएं। हालांकि आजकल बच्चे बहुत सारी चीजें फेस कर रहे हैं उनके लाइफ में, हमें इस चीज का एहसास नहीं होता। कभी कभार बच्चे वो शेयर नहीं करते, और वो ऐसा वातावरण बनाने से ताकि बच्चे हमारे साथ ऑनेस्टली शेयर कर सकें, बातों को सहजता से हमारे साथ बातचीत में ले आ सके, ये करना बहुत आवश्यक है।
मुझे बात
मैं
याद आती है,
समझता
एक जरा सी बात है कि
हूँ जी।
अपने जो जानकी दादी जी चीफ जो संस्था के थे, वो हमेशा कहते थे कि केयर, शेयर, शेयर, केयर और इंस्पायर, ये तीन बात हमेशा कहते थे कि शेयर करिए, बच्चे के साथ बातचीत करिए, उनकी केयर करिए और उसको इंस्पिरेशन, उसको इंस्पायर करिए। तो आप याद रखिएगा बहन जी, शेयर, केयर और इंस्पायर।
बहुत ही अच्छी बात आपने कही दीदी कि पेरेंटिंग में कितना इम्पोर्टेंट है कि हम केयर तो करते हैं बट शेयरिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब आप वो एहसास दिलाते हैं कि आप केयर कर रहे हैं और फिर इंस्पायर भी कर सकते हैं। ज्यादा प्रश्न तो हमारे साथ और भी हैं दोस्तों, बट मैं वो सारे प्रश्न अभी नहीं ले पाऊंगा क्योंकि हम ऑलमोस्ट 55 मिनट्स पे आ चुके हैं। पूजा रजानी जी का प्रश्न है जिसको मैं कल लेने की कोशिश करूंगा। कुछ और दोस्तों के भी प्रश्न है, रविकांत जी का प्रश्न है, वो भी मैं कल शामिल करने की कोशिश करता हूँ। आखिरी प्रश्न, वीनस भाटिया हमारे साथ हैं और फेसबुक से लाइव देख रही हैं, और वीनस सवाल पूछती हैं, सब कुछ है पर खुशी नहीं है। तो ये सिर्फ उन्होंने शाउट आउट दिया है, और हालांकि वो प्रश्न नहीं पूछ रही बट वो ऐसा महसूस कर रहे हैं अभी फिल वक्त, उन्हें कुछ एडवाइस करें दीदी। वीनस
जीविनस बेन, खुशी जैसी तो खुराक ही नहीं है, तो सबसे पहले तो खुशी में रहना ही रहना है, और उसके लिए संकल्प करना है कि परमपिता परमात्मा जो है वो खुशियों के सागर है, मौजों के सागर है, तो हमें भी हमारी जीवन के अंदर हमेशा खुशी में और मौज में हमें रहना है, और हमें अपना आत्मा निरीक्षण करना है कि ऐसी हमारे में क्या बात है, ऐसी क्या बड़ी चीज है जो हमारी खुशी को गायब हो गया है, खुशी को लेकर के गई है और खुशी हमारी गायब हो गई है। इतनी बड़ी कोई समस्या है, इतनी बड़ी कोई बात है, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो पहाड़ के जैसी, फिर भी हमको तो उसको राई बनानी है, और राई से उसको रुई बना देनी है, तो हमें हमारा एटीट्यूड हम क्या रखते हैं वो बहुत महत्व की बात है, कि हम छोटी सी बात में भी तनाव में तो नहीं आ जाते हैं, जो खुशी गायब हो जाती है, जो उमंग उत्साह गायब हो जाता है। तो परमात्मा में जब हम निश्चय रखते हैं, तो निश्चय रखने से एक नशा और खुशी हमें रहती है कि परमात्मा हमारे हैं और हम परमात्मा के हैं, और वो हमारी बहुत सुंदर रीति से केयर कर रहे हैं, तो जीवन हमारा बहुत प्राप्तियों से भरपूर है, और हम हमेशा माला माल है परमात्मा की प्राप्तियों से, तो उसमें हमारे हमें खुशी ही खुशी है फिर तो हमेशा। इसलिए आप धन्यवाद भी दीजिए परमात्मा को कि आपने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है, ये कोई खुशी की कम बात है क्या? आज हम बर्थडे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? पता होता है हर एक को कि जीवन का 1 साल कम हो गया, फिर भी सेलिब्रेट करते हैं, वो इसीलिए कि हमें मनुष्य जीवन तो मिला है, तो मनुष्य जीवन को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो आप भी ऐसे करिए, करके देखिए, आपको खुशी रहेंगी, बिल्कुल रहेंगी।
आपने बहुत ही सुंदर सी ये बात कही कि भाई खुशी जैसी खुराक नहीं है, और उस चीज को याद रखना है, लाइफ में खुशी नहीं है तो कुछ नहीं है, तो उस चीज के लिए ये प्रयास करने की आवश्यकता हमें भी है। दोस्तों
बस
बहुत बहुत शुक्रिया आप।
चेहरा
जी
मुस्कुराता रहिए, रखिए, स्माइल कॉस्ट नथिंग, आप
जी
मुस्कुराएंगे, सामने वाला भी मुस्कुराएगा, आपको खुशी मिलेंगी।
जी ये सिंपल सी बात है, ये तो किया जा सकता है, स्माइल करना तो इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। और अगर हम ये करेंगे तो बहुत ही अच्छे प्रयास के रिजल्ट्स भी हमें मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी आपका कि आज आप हमारे साथ जुड़े, हमारे दोस्तों के प्रश्नों के आपने उत्तर दिए, और हमारे दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जो इतने सारे दोस्तों ने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं। कुछ दोस्तों के प्रश्न हम नहीं ले पाए हैं, इसके लिए मैं अपोलोजाइज करता हूँ। कल के कार्यक्रम में शामिल करने की कोशिश करता हूँ, और कुछ प्रश्नों को मैं क्लब करने की कोशिश करता हूँ। हालांकि आपका नाम नहीं ले रहा है या फिर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये इंटेंशन नहीं होता है दोस्तों की, बहुत सारे प्रश्न होते हैं, उन सबके साथ जस्टिस करने का भी प्रयास रहता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं पुनः मीरा दीदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि वो आज हमारे साथ आए और उन्होंने हमें अपने उत्तरों से लाभान्वित किया। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी आपका।
शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, सभी भाई बहनों का, सभी दर्शकों का जो सुन रहे हैं और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनका तो बहुत ही ज्यादा शुक्रिया कि आपने क्वेश्चन पूछा और स्पष्ट बात किया, तो बहुत अच्छा लगा हमको भी।
दीदी मैं आपसे अभी रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी चंद मिनटों के लिए आप हमें मेडिटेशन में गाइड करें। हर मास्टर ऑफ मेडिटेशन के साथ हमारे दोस्त मेडिटेशन करते हैं 4-5 मिनट के लिए, तो प्लीज मेडिटेशन में हमें कराएं।
जी, तो आप सभी को धन्यवाद। अभी थोड़े समय के लिए हम मेडिटेशन करेंगे, स्वयं को डिटेच समझेंगे, न्यारा समझेंगे, और हम अंतर जगत की यात्रा करेंगे। ये हमारा अपना क्षण है, अपना समय है। We have to turn our mind from the world outside. We have to tune our mind to inner dimension. We have to train our mind to focus on suggested thoughts. My Chaitanya Shakti, Atma hu. मन, बुद्धि, संस्कार सहित हूं। प्रसन्न चित हूं, संतुष्ट हूं, निश्चिंत हूं, निश्चित हूं, निर्विघ्न हूं, भाग्यशाली हूं, शांति दूत हूं, शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है, मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की ईश्वरीय संतान हूं, परमपिता परमात्मा ऑलमाइटी ऑथॉरिटी है, ज्ञान सूर्य है, लाइट हाउस माइट हाउस है, विश्व कल्याणकारी है, हमारे गाइड है, लिबरेटर है, जीवन रूपी नैया के खेवैया है, ये विश्व के बागवान है, माता पिता बंधु सखा स्वामी है, परम रक्षक है, क्षमा के सागर है, दया के सागर है, रहम दिल है, परम कृपालु है, मैं परमपिता परमात्मा से शांति और शक्ति की किरणें प्राप्त कर रही हूं, आनंद की किरणें प्राप्त कर रही हूं, आनंद में सराबोर हो रही हूं, आनंद की लहरों में लहरा रही हूं, परमात्मा पिता का वरदान भरा हाथ, दुआओं भरा हाथ, आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पे घूम रहा है, मैं परमात्मा के सानिध्य में हूं, परमात्मा की छत्र छाया में हूं, आई लाइक पीस, आई लव पीस, आई शेयर पीस, I enjoy peace. I feel peace. I experience peace. I am being of peace. I am peace. Peace is my original nature. Peace is my inherent quality. Vibrations of peace are all around me. Waves of peace gently begin to touch me. ऐसी मैं शांत स्वरूप आत्मा हर कर्म इस कर्म क्षेत्र पर बहुत ही शांतिपूर्वक प्रेम पूर्वक और आनंद पूर्वक करूंगी। यही मेरा दृढ़ संकल्प है। ओम शांति, ओम शांति।